اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیعہ آڈیو کی جانب سے کتاب البما القرآنیہ آپ کے سامنے آڈیو کی شکل میں پیش کی جاتی ہے. آئیے چلتے ہیں اس کتاب کی چھٹی ریکارڈنگ کی جانب. ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب پیغمبر نے کہا ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ سے ڈرتے رہو جس حد تک تم اس سے ڈر سکتے ہو. وافہ نے کہا کہ اس سے مراد جس حد تک یا جہاں تک تم اس سے ڈر سکتے ہو. پھر کہا اور سنو جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو. اس سے مراد کہ اللہ اس کا رسول اور اس کی آل اطہار جو حکم دے اسے بجا لاؤ. اس نمبر 80 اور اللہ کا قول اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. محمد ابن ابراہیم النعمانی جو جانے جاتے ہیں ابن زینب کے نام سے نے کہا کہ عبداللہ جعفر ابن حمام بن سہیل نے ہمیں خبر دی. انہوں نے عبداللہ جعفر ابن محمد الحسنی سے ہمیں خبر دی. انہوں نے ابو اسحاق ابن ابراہیم اسحاق الخبیری نے ہمیں خبر دی. انہوں نے کہا کہ ابو اسحاق ابن ابراہیم جو کہ محمد ابن زید ابن عبد الرحمن یتامہ نے ہمیں خبر دی. الحسن ابن الحسین انصاری سے انہیں محمد ابن الحسین نے انہیں ان کے دادا نے انہوں نے کہا علی ابن الحسین نے فرمایا کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں اور فرمایا کہ اس دروازے سے ایک شخص نکلے گا جو اس بارے میں سوال کرے گا وہ جس سوال کو لے کر پریشان ہے. اسی اثنا میں وہ شخص آ گیا. دیکھنے میں مصر کا معلوم ہوتا تھا. اس کا قد کافی لمبا تھا. وہ آیا اور کہنے لگا پیغمبر کو سلام کیا اور بیٹھا اور کہا اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو. تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے کہ جسے اللہ نے مضبوطی سے تھام لینے اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا لیا اور پھر کچھ دیر بعد اپنے سر کو بلند کیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی اسے تھامے گا وہ اس دنیا میں بھی محفوظ ہے اور آخرت میں بھی. وہ شخص اچھلا بھاگا اور علی ابن ابی طالب کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہا میں اللہ اور اس کے پیغمبر کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہوں. پھر وہ اٹھا اور چلا گیا. اصحاب میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں اس شخص کے ساتھ ہوں اور اللہ کے حضور عذر پیش کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اس پر لطف پاؤ گے. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس شخص سے کہنے لگا اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہو. تو اس شخص نے جواب دیا کہ کیا تمہیں سمجھ آئی کہ پیغمبر اکرم نے مجھ سے اور میں نے ان سے کیا کہا. تو اس شخص نے کہا ہاں یقیناً سمجھ گیا اور کہا اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوگے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا, لیکن اگر نہیں تھامی اللہ کی رسی تو پھر وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. الامالی میں شیخ الطوسی نے بیان کیا کہ عمر نے مجھے خبر دی. انہوں نے کہا کہ احمد نے مجھ سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جعفر ابن علی الناجی الکندی نے مجھ سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ حسن ابن الحسین نے مجھ سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ابو جسف السانم نے مجھ سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ابو عباس یعنی عمر ابن راشد ابو سلیمان نے امام جعفر ابن محمد سے خبر دی کہ انہوں نے اللہ کا قول اس دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کے متعلق فرمایا کہ ہم نعمت میں سے ہیں اور اللہ کے اس قول اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کے متعلق فرمایا کہ ہم اللہ کی رسی ہیں. القصائص میں سعید العائد نے کہا کہ ہارون ابن موسیٰ نے مجھ سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ابو احمد ابن محمد ابن علی نے مجھ سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ عیسیٰ البائل جبلی نے امام अबुल हसन से रिवायत की कि पैगंबर अकरम ने फरमाया कि मेरे चचा यानी इब्ने अब्बास को बुलाओ। इन्हें बुलाया गया, फिर इब्ने अब्बास और अली पैगंबर अकरम को थामे हुए खैमे से बाहर आए। आपने बैठकर जमात की इमामत करवाई, फिर आपको मिंबर पर बिठाया गया। मदीने के तमाम लोग बशमूले महाजरीन अंसार हत्ता के औरतें भी खुलूस से बाहर आ गई थी। इस मौके पर इनमें से कुछ लोग रो रहे थे और कुछ चिल्ला कर कह रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया और कुछ देर के लिए खामोशी अख्तियार की। आपने खुतबे में फरमाया कि इंसानों और अजनाह में से आज की इस घड़ी में जो कुछ मुझसे सुना है इन तक पहुंचा दें कि जो यहाँ नहीं है यकीनन मैं तुम्हारे दरमियान किताबें अल्लाह छोड़कर जा रहा हूँ, जो नूर है हिदायत है और इसमें हर चीज का वाज़े हुक्म है जिसे अल्लाह ने लाजमी करार दिया है। ये अल्लाह की तरफ से है, मेरी तरफ से और मेरे जानशीन की तरफ से तुम पर हुज्जत है, जैसा कि मैं तुमसे बहुत बड़ा इल्मी खजाना छोड़कर जा रहा हूँ यकीनन दीन का इल्म जो कंदील हिदायत है और इसका पुर नूर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। ये अल्लाह की रस्सी है और अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम सब आपस में दुश्मन थे तो इसने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाली और तुम्हें आपस में एक दूसरे का भाई करार दिया और तुम जहन्नुम के किनारे पर थे, इसने तुम्हें नार से बचाया। इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियां खोल कर बयान करता है ताकि तुम फलाह पाओ। आले इमरान आयत नंबर 103। ए लोगों, ये अली है जो इनसे आज और इसके बाद मोहब्बत रखे और इनकी इताअत करे तो यकीनन इसने अल्लाह के साथ किए हुए अहद को निभाया। इसके बावजूद जो इन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से अदावत रखे और इनसे तफरका रखे तो वो रोजे महशर गूंगा और बहरा लाया जाएगा और अल्लाह के हुजूर कुछ भी कहने के काबिल ना होगा। इस नंबर 81। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाह का गिरोह है जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता है। इस नंबर 82। अली इब्न अबी तालिब अल्लाह के इस गिरोह में से हैं जो हुक्म देता है कि क्या सही है। इस नंबर 83। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस गिरोह में से हैं जो लोगों को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इकदाम करने से रोकता है। इस नंबर 84। और लाजिम है कि तुम में से कुछ ऐसे लोग हों जो नेकी की तरफ बुलाएं और अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से मना करें और वही पूरी पूरी फलाह पाने वाले हों। आले इमरान आयत नंबर 104। अली इब्ने इब्राहिम ने कहा, रिवायत है अबू अल-बहरूदी से कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस कौल और लाजिम है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हों जो नेकी की तरफ बुलाएं और अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से मना करें और वही पूरी पूरी फलाह पाने वाले हों। सूरह आले इमरान आयत नंबर 104 की तफसीर में इरशाद फरमाया, ये आयत आले मोहम्मद और इन लोगों की शान में नाजिल हुई जो आले मोहम्मद के हुक्म की इताअत करते हुए लोगों को अच्छाई की तरफ दावत और बुरी बातों से मना करें और फलाह और वही फलाह पाने वाले हैं। आयत नंबर 85। जिस दिन कुछ चेहरे नूरानी होंगे और कुछ मुंह काले रहे और वो लोग जिनके चेहरे नूरानी होंगे वो रहमत में होंगे, इसमें हमेशा रहेंगे। अली इब्ने इब्राहिम कहते हैं कि मुझसे बयान किया मेरे वालिद ने, इनसे बयान किया सफ़वान इब्ने याहयाउल जमाल ने, इनसे बयान किया अबुल जारूद ने, इनसे बयान किया इब्राहिम इब्ने इमरान इब्ने हशम ने, इनसे बयान किया मालिक इब्ने मरवाह ने, इनसे बयान किया अबू जहर ने। उन्होंने कहा, जब ये आया जिस दिन कुछ चेहरे नूरानी होंगे और कुछ मुंह काले नाजिल हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोजे महशर मेरी उम्मत मेरे पास 5 मर्तबों में आएगी, मैं इनसे सवाल करूंगा, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़ी, मैंने तुम्हारे दरमियान जो दो गिराह कदर चीजें छोड़ी इनका तुमने क्या किया? तो वो जवाब देंगे, इनमें से एक को हमने सुना, इसके हुक्म को इन बसे पुष्ट डाल दिया, और दूसरी चीज अहले बैत के साथ हमने दुश्मनी की, तनफर किया और इन्हें झुटलाया। तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहूंगा कि जहन्नुम में जाओ प्यासे और काले मुंह के साथ दाखिल हो जाओ। फिर एक और झंडा आएगा जो इस उम्मत के फिरौन का होगा। तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहूंगा, मैंने तुम में जो दो गिरह कद्र चीजें छोड़ी थी, तुमने इनके साथ क्या सलूक किया? वो जवाब देंगे कि कुरान को हमने बदल दिया, इसे फाड़ दिया, इसकी मुखालिफत की, और अहले बैत के साथ हमने दुश्मनी को रवा रखा और इनसे जंग की। तो मैं मोहम्मद इनसे कहूंगा, जाओ जहन्नुम में इसी आलम में कि तुम प्यासे से भत्ते हो और काले मुंह के साथ। आपने फरमाया, फिर एक और झंडा आएगा जो इस उम्मत के सामरी का होगा, जो मैं मोहम्मद इनसे सवाल करूंगा कि तुमने कुरान और अहले बैत के साथ क्या सुलूक किया? तो जवाब देंगे कि हमने कुरान की नाफरमानी की और इसे मुअत्तल कर दिया, और अहले बैत को हमने उजाड़ दिया और इन्हें नजरअंदाज किया। तो मैं मोहम्मद इनसे कहूंगा कि जाओ जहन्नुम में इसी हालत में कि तुम्हारे मुंह काले होंगे और तुम प्यास की शिद्दत में रहो। आपने फरमाया, फिर एक और झंडा आएगा और इसमें इस उम्मत के अव्वल व आखिरी खारजी होंगे। तो मैं मोहम्मद इनसे सवाल करूंगा कि मैं दो चीजें तुम में छोड़ गया था, कुरान और अहले बैत, इनके साथ तुमने क्या सुलूक किया? तो वो कहेंगे कि अहले बैत के साथ हमने जंग की और इन्हें कत्ल कर डाला। तो मैं इनसे कहूंगा, जाओ जहन्नुम में प्यासे और इस हालत में कि तुम्हारे मुंह सियाह कर दिए जाएंगे। आपने फरमाया, फिर एक और झंडा आएगा जिसका ताल्लुक इस उम्मत के अल्लाह के मुकर्रर करदा इमाम से होगा, और वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन होगा। तो मैं इनसे सवाल करूंगा कि तुमने मेरे तरके में छोड़ी हुई दो गिरा कदर चीजें, कुरान और अहले बैत के साथ क्या सलूक किया? वो जवाब देंगे कि कुरान के रास्ते पर हम चले और इसकी इताअत की, और अहले बैत को हम थामे रहे, इनसे मोहब्बत की, इन्हें दोस्त रखा, इनकी मदद की, यहाँ तक कि इनकी हिफाजत के लिए हमने अपना खून बहा दिया। फिर मैं मोहम्मद इनसे कहूंगा कि मैं जन्नत में जाऊं मुतमईन दरख्शा और नूरानी चेहरों के साथ। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत, जिस दिन कुछ चेहरे नूरानी होंगे और कुछ मुंह काले, फिर जिन लोगों के मुंह काले होंगे इनसे कहा जाएगा, तुम ईमान लाने के बाद मुनकिर हो गए थे ना, तो अब जैसा इनकार करते थे वैसा इसके बदले में आजाब चखो। रहे वो लोग जिनके चेहरे नूरानी होंगे, वो अल्लाह की रहमत में होंगे और इसी में हमेशा रहेंगे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 106 से 107, हवाला अल बुरहान जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 308। इस नंबर 86, तुम कायदुल गरा मुअज्जलीन हो, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कौल, जिस दिन कुछ चेहरे नूरानी होंगे और कुछ मुंह काले होंगे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 106। आयत नंबर 86, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो बनी नौ इंसान के लिए भेजे गए हैं, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कौल, जो उम्मत हिदायत के लिए भेजी गई, इनमें तुम सबसे बेहतर हो, नेकी का हुक्म देते हो और बदी से मना करते हो, और अल्लाह का ईमान लाते हो, और अगर अहले किताब ईमान लाते तो इनके लिए बहुत अच्छा होता। इनमें से कुछ तो मोमिन है और बहुत से नाफरमान। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। इस नंबर 88, तुम नेकी का हुक्म देते हो। इस नंबर 89, और बदी से मना करते हो। इस नंबर 90, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। अली बिन इब्राहिम ने कहा कि मेरे वालिद ने मुझसे बयान किया, इनसे इब्ने अबी उमैर ने बयान किया, इनसे इब्ने सन्नान ने, उन्होंने इमाम अबू अब्दुल्लाह से, कि जब मैं सन्नान ने हजरत के सामने ये आया, जो उम्मतें हिदायत के लिए भेजी गई तुम इनमें से बेहतरीन उम्मत हो, पढ़ी। तो अबू अब्दुल्लाह ने फरमाया, बेहतरीन उम्मत तुमने अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को और इनके दोनों फर्जंद को कत्ल कर दिया, और फिर भी बेहतरीन उम्मत का दावा। तो सन्नान ने कहा, मैं आप पर फिदा हूँ, मुझे बताएं ये किस तरह नाजिल हुई थी। इमाम ने फरमाया, ये आयत इस तरह नाजिल हुई थी कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो बनी नौ इंसान के लिए भेजे गए हो, क्या तुमने नहीं देखा कि इन हजरात ने अल्लाह किस तरह इज्जत व तकरीम करता है। तुम नेकी की दावत देते हो, बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर यकीन रखते हो। इस नंबर 91 और अल्लाह का कौल और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 110। अली बिन इब्राहिम ने कहा, मुझसे बयान किया मेरे वालिद ने, इनसे बयान किया इब्ने अबी उमैर ने, इनसे बयान किया सन्नान ने, इनसे अबू अब्दुल्लाह ने, कि जब मैं सन्नान ने अबू अब्दुल्लाह के सामने ये आया, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो बरी नौ इंसान के लिए भेजे गए हो, सूरह बकरा आयत नंबर 110। तो अबू अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम लोगों ने अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और इनके दोनों बेटों इमामुल हसन अलैहिस्सलाम और इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। सन्नान ने कहा, ए अबू अब्दुल्लाह, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, आप बताइए ये आयत फिर किस तरह नाजिल हुई। इमाम ने फरमाया, ये आयत इस तरह नाजिल हुई, तुम बेहतरीन इमाम हो जो इंसानों की हिदायत के लिए भेजे गए हो, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह की बारगाह में इन हजरात का क्या मर्तबा है। नेकी का हुक्म देते हो और बदी से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो, सूरह बकरा आयत नंबर 110। इस नंबर 92, तुम अल्लाह की पनाह हो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कौल, ये जहां भी होंगे जिल्लत व ख्वारिश से दोचार होंगे मगर ये कि अल्लाह की पनाह से मुतमस्सिक हो जाएं, सूरह आल इमरान आयत नंबर 112। इब्ने शहर आशूब ने खबर दी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, इस आयत की तफसीर के मुतालिक इमाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह से मुराद कुरान है और लोगों की पनाह से मुराद अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अलगैबिया में मोहम्मद इब्ने इब्राहिमुल नौमानी इब्ने जैनब ने कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने मुअम्मरुल तबरेसी जो यजीद इब्ने माविया के मुलाजमों में से था और अहले बैत के दुश्मनों में से था, कि हमने हमसे शहर तबर यास में 333 हिजरी में बयान किया कि मेरे बाप ने मुझसे बयान किया, उन्होंने कहा, अली इब्न हाशिम और अल हसन इब्न सक्कान ने इनसे बयान किया, उन्होंने कहा, हमसे अब्दुल रज्जाक इब्न हम्माम ने, उन्होंने कहा, अब्दुल रहमान इब्न औफ ने खबर दी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से, उन्होंने कहा कि यमन के लोग एक गिरोह की सूरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अहले ईमान, बहुत मोहब्बत मेहनत और लगन के साथ तुम लोगों को तलाश करते हुए आए हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने देखा तो आपने फरमाया, वो लोग जिनके दिल मेहरबान हैं और जिनकी जड़ों में ईमान पहुंच गया है, पता इन्हीं की होगी जो 70,000 के लश्कर की सूरत में मेरे जानशीन और मेरे वसीह के जानशीन की मदद के लिए जमा होंगे, जिनकी तलवारों के पट्टे कस्तूरी से बने हैं। तो अहले ईमान ने पूछा, ऐ पैगंबर इस्लाम, आपका वसी कौन है? आपने फरमाया, वो है कि जिसके लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तिफरका मत डालो। अहले यमन ने कहा, ऐ नबी अल्लाह, हमें वाजह तौर पर बताएं ये रस्सी कौन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तमसील से ये आयत कही, पाए जाए इनके लिए जिल्लत करार दी गई है सिवाय इसके अल्लाह के अहद और आदमियों के अहद की पनाहगाह में आ जाएं। अल्लाह की तरफ से रस्सी इसकी किताब है और इंसानों की तरफ से मुराद मेरा जानशीन। अहले यमन ने कहा, ऐ पैगंबर अकरम, कौन है आपका जानशीन? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी शान में अल्लाह ने यह आयत, हाय अफसोस, मैंने जुन्बुल्लाह के बारे में ये कैसी सुस्ती की। अहले यमन ने पूछा, ऐ हुजूर, ये जुन्बुल्लाह कौन है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है कि जिसके मुतालिक अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और इस दिन जालिम अपने दोनों हाथ अपने दांतों से काट खाएंगे और ये कहेंगे कि काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। अल-फुरकान 271। वो मेरा जानशीन है और मेरे बाद इख्तियार किया जाने वाला रास्ता। फिर अहले यमन ने कहा, ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह की कसम है, आप अपने वसी को हम पर जाहिर कर, हम शौक से इन्हें देखने के लिए बेताब हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है कि जिसे अल्लाह ने इदराक का मलिका रखने वालों के लिए निशानी करार दिया है। जब तुम इसकी तरफ दिल की आंखों और कानों और भरपूर काबिलियत से देखेंगे तो तुम इसे पहचान जाओगे कि वो मेरा जानशीन है। जैसा कि तुम्हें ये मालूम हुआ कि मैं तुम्हारा नबी हूँ, फिर अब तुम लोग सफों के सामने से चेहरे देखते हुए गुजरो, और वो होगा कि तुम्हारा दिल जिसकी तरफ झुके। अल्लाह अज़्ज़वजल अपने किताब में इरशाद फरमाता है, आदमियों में से बास के दिल इनकी तरफ माइल कर दीजिए, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 37, और इनके औलियाओ औसिया की तरफ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू आमिरुल अशरी को अल अशरियों में से, अबू इज्जतुल गुलाफी को गुलानियों में से, ज़याबान उस्मान इब्ने कैस, अज़ियाहल कुद्दूसी को दोसियों में से, और लाहक बिन इलाका, खड़े हो जाओ। चुनाचा वो खड़े हुए और सफों के सामने से गुजरते हुए चेहरों का इम्तिहान लेते हुए, ऐसे में इनमें से एक शख्स ने खुशी का इजहार करते हुए एक सरबरहना शख्स की तरफ इशारा किया और कहा, इस शख्स की तरफ हमारे दिल झुक रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम अल्लाह के मुंतखब शुदा बंदे हो कि तुमने मेरे वसी और जानशीन को पहचान लिया इस हालत में कि तुम पहले इसे नहीं जानते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसे पहले से जानते थे। उन्होंने बुलंद आवाज से रोते हुए कहा, ऐ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने और लोगों की तरफ देखा तो हमें अपने दिल में इनके लिए एहतराम महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब हमने इन हजरात की तरफ देखा तो हमारे दिल थरथराए और हमारे दिल, हमारे नफ्स और रूह को प्यास महसूस हुई, हमारे जिगर हिल गए, हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए और हमारे कल्ब मुनव्वर हो गए, और ऐसा महसूस हुआ कि वो रिश्ते में हमारे वालिद हैं और हम इनके बेटे। चुनाचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन कोई इसकी तावील नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और इसके जो इल्म में रास्ख है। तुम इनके लिए ऐसे हो कि जिनसे पहले बेहतरीन इनाम का वादा किया गया है, और तुम नारे जहन्नुम से दूर रखे जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग अहले यमन यहीं कायम करेंगे, हत्ता कि ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की क़यादत में जंगे जमल और सिफीन में हिस्सा लें और ये सिफीन में मक़तूल होंगे। अल्लाह इन लोगों पर रहमत नाजिल करे। हुजूर ने इन्हें जन्नत की बशारत की खुशखबरी दी और बताया कि वो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज होंगे। अल्लाह इनको इज्जत से नवाजे। अल बुरहान जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 305 इस नंबर 93। और अल्लाह अज़्ज़ वजल का कौल, और अनकरीब अल्लाह शुक्र करने वालों को जजा देगा, सूरह आले इमरान आयत नंबर 144। इब्ने शहर आशूब ने खबर दी, साइद इब्ने जबीर ने इब्ने अब्बास से कि इब्ने अब्बास ने अल्लाह के इस कौल, अगर वो मर जाए या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम उल्टे पाओ अपने दीन पर पलट जाओ। जो शख्स भी अल्लाह को पुष्ट करेगा और वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। और अल्लाह का कौल अनकरीब, अल्लाह शुक्र करने वालों को जजा देगा। कहा कि शुक्र करने वालों में से मुराद अली इब्ने अबी तालिब अलैह सलाम है, और उल्टे पांव पलट जाने वालों से मुराद वो लोग हैं जो वापस पलट गए और मुर्तदिद हो गए। अल अयाशी ने खबर दी फजील इब्ने यसार से, उन्होंने अबू जाफर से कि अबू जाफर ने फरमाया, जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो तमाम लोग काफिर हो गए सिवाय चार लोगों के, अली, अल मिकदाद, सलमान और अबू जर। मैंने कहा और अम्मार? तो इमाम अबू जाफर ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि इन अशखास के बारे में जो बिल्कुल मुखलिस थे तो ये तीन अफराद थे। इस नंबर 94 तुम शुक्र गुजारों में से हो। इस नंबर 95 तुम अल्लाह की तरफ से हाकिम हो। इस नंबर 96 तुम इनमें से हो जो किसी सूरत डगमगाते नहीं जो कुछ भी आन पड़े। इस नंबर 97 तुम इन लोगों में से हो जो कमजोर नहीं। इस नंबर 98 तुम इनमें से हो जो खुद को पस्त नहीं करते। इस नंबर 99 तुम मुस्मम इरादे वाले हो। इस नंबर 100 तुम इनमें से हो जो कहते हैं, ऐ हमारे अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारे मामलात में हमारी ज्यादतियों को हमें साबित कदम रख और हमारी मदद कर काफिरों के मुकाबले में। इस नंबर 101 तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अल्लाह इस दुनिया में कारे खैर देगा। इस नंबर 102 तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अल्लाह रोजे आखरत में जजाय खैर देगा। इस नंबर 103 और अनकरीब हम मुश्किल गुजार लोगों को जजाय खैर देंगे। और नबियों में बहुत से ऐसे हुए हैं जिनकी मईसत में अक्सर अल्लाह वाले लड़े, फिर अल्लाह की राह में जो मुसीबत इन पर पड़ी ना इनसे उन्होंने हिम्मत पस की, ना दीवानापन जाहिर किया और ना दुश्मन के आगे गिड़गिड़ाए। और अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। और इसका कौल इसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने ये कहा, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों और मामलात में हमारी ज्यादतियों को बख्श दे और हमारे कदम जमाए रख और दुनिया का भी बदला दिया और आखरत का बदला इससे अच्छा दिया। और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 145 से 148। अल अख्तसास में शेख मुफीद ने एक हदीस रिवायत की है कि अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम 70 मनकबत में से बसनद इब्न दाआब इन्हें जंग अहद से अलग कर दिया गया था। इस जंग में इन्हें 80 जख्म आए थे। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आयादत के लिए तशरीफ लाए तो इन्हें देखकर रोने लगे और कहा अल्लाह को ही हक है कि वो जजा दे और इस शख्स को जजा दे जो हमारी मोहब्बत में जख्मी हुआ। इब्ने दाआब ने रोते हुए जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इतने ही अजीज हैं जितने मुझे मेरे माँ बाप। इज्जत अल्लाह के लिए है और इस अल्लाह ने मुझे अपना रास्ता बदलते हुए और ना ही दूर भागते हुए पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आप इतने ही अजीज हैं जितने मेरे माँ बाप, मुझे शहादत से क्यों महरूम रखा गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन शहादत तुम्हारे सामने है। इसने कहा, अल्लाह चाहता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू सुफियान ने हमें धमकी भेजी है कि हमारुल असआ हमारे और तुम्हारे दरमियान मामला दुरुस्त करवा देगा। इब्ने दाआब ने कहा, आप मुझे इतने ही प्यारे हैं जितने मुझे मेरे माँ बाप, अगर मुझे हाथ पांव से उठा कर भी ले जाया जाए फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। फिर ये आयत नाजिल हुई। और नबियों में बहुत से ऐसे हुए हैं जिनकी माईयत में अक्सर अल्लाह वाले लड़े, फिर अल्लाह की राह में जो मुसीबत इन पर पड़ी ना इससे उन्होंने हिम्मत पस्त की और ना ही बूदा पन जाहिर किया और ना दुश्मन के आगे गिड़गिड़ाए। और अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। और इस आयत से पहले वाली आयत भी इसी को मद्देनजर रखते हुए नाजिल हुई। और कोई متنفس بغیر اللہ کے حکم کے جو لکھا ہوا اور مقرر کیا ہوا نہیں مر سکتا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا اس کو وہیں دیں گے، اور عنقریب ہم شکر گزار لوگوں کو جزائے خیر دیں گے. آل عمران آیت نمبر 145. تو یہ سن کر ابن دعاب نے زخموں سے متعلق شکایت کرنا بند کر دی، لیکن دو عورتوں نے اس سے متعلق شکایت کی اور کہا، اے نبی اللہ، آپ نے فرمایا، ابن دعاب کی رخصت پر ہم نے اس کے سر سے پاؤں تک کے زخموں کے نشان کو گنا تو تعداد میں 1000 تھے. اس پر اللہ کی رحمت ہو. البرحان 320. اس نمبر 104. وہ اللہ کا راستہ ہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم راہ خدا میں قتل کیے گئے یا اپنی موت سے مر گئے تو جو کچھ لوگ جمع کرتے رہتے ہیں ان سب سے اللہ کی مغفرت اور رحمت بہت ہی بہتر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 158. ابن بابوہ نے اپنے والد سے خبر دی، ان سے بیان کیا. سعد ابن عبداللہ نے ان سے بیان کیا. محمد ابن الحسین نے ان سے بیان کیا. محمد ابن سنان نے ان سے بیان کیا. عمار ابن مروان نے ان سے بیان کیا. مفضل نے ان سے بیان کیا. جابر نے ان سے بیان کیا. ابو جعفر نے جابر نے کہا کہ میں نے امام ابو جعفر سے اس آیت، اگر تم راہ خدا میں قتل کیے گئے یا اپنی موت سے مر گئے کے متعلق سوال کیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ میں جابر نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا یہاں تک کہ آپ سے نہ سن لوں. امام ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا راستہ علی ابن ابی طالب اور ان کی آل اطہار ہے، اور جو کوئی بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں قتل کیا گیا تو یقیناً وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا. اور یہ آیت پر جب تک کوئی یقین نہیں کرے گا تب تک اسے قتل نہ کیا جائے اور اسے موت نہ آ جائے. وہ جسے قتل کیا گیا اسے زندہ کیا جائے گا اس مدت تک کہ اسے موت آ جائے، اور جسے موت آئی تھی تو اسے زندہ کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے قتل کیا جائے. اس نمبر 105. تم اللہ کی خوشنودی ہو. اس نمبر 106. اور اللہ عز و جل کا قول، کیا جو شخص اللہ کی رضا کی اتباع کرے اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک ان کے بڑے درجات ہیں، اور جو کچھ یہ کیا کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. سورہ آل عمران 162 سے 163. محمد ابن یعقوب نے خبر دی علی ابن محمد سے، انہوں نے سہل ابن زیاد سے، انہوں نے ابن محبوب سے، انہوں نے حشام ابن سلیم سے، انہوں نے عمار الطباطی سے. عمار الطباطی کا بیان ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے اللہ کے اس قول، کیا جو شخص اللہ کی رضا